आज हम आपके लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है मास कम्युनिकेशन, और हम बात करेंगे फोटोग्राफी एक परिचय। जी हाँ, और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद। और प्यारे शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपने पाठ 25 का। और जब आप जनसंचार विषय का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो फोटोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। यूँ भी क्योंकि आप रोज़ाना बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं अपने मोबाइल पे, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उनको अपलोड भी करते हैं। और हम सभी को पता है कि जो हमारा पाठ 25 है, फोटोग्राफी एक परिचय, उसको पढ़ने के उपरांत हम लोग को कभी कभी रोमांच भी लगता है कि क्यों ना हो कि हम एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर अपना करियर को प्रारंभ करें। और हम सभी को फोटोग्राफी पसंद भी है, अपने फोटोग्राफ देखना हम पसंद करते हैं। विशेषकर हमारे मित्रों के साथ जब हमारा कोई समूह में कोई फ़ोटो होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे परिवार की जो फ़ोटो होती हैं उनको आप कुछ वर्षों के बाद जब देखते हैं तो आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, या अपने दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वो समय आपको तुरंत जीवंत सा लगने लगता है जो आपने उस पल गुजारा था। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि ऐसा करना पहले तो संभव नहीं था, क्योंकि पहले तो चित्रकारी जो होती थी वो पेंटिंग के माध्यम से होती थी, लोग चित्र बनाते थे। और अगर हम उससे पहले की बात करें प्यारे शिक्षार्थियों, तो हम देखते हैं कि गुफाओं में जो है हमारे आदिम मानव जो हैं वो सब चित्रकारी करते थे, और इस प्रकार की चित्रकारी को हम लोग आज भी गुफाओं में देख सकते हैं। और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को किस प्रकार से एक भाव भंगिमाओं के साथ उकेरा गया था वो आज भी बहुत अपने आप में चित्रण करने में सक्षम हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो उस समय की जो चित्रकारी थी उसमें बहुत ज़्यादा खर्च वहन करना संभव नहीं था, और जो राजा होते थे या महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे वही चित्रकारी करते थे। लेकिन आप देखिए कि जब से फोटोग्राफी की खोज हुई है, फोटोग्राफी की खोज के बाद फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और यह परिवर्तन कालांतर में चलकर के इतना बढ़ा कि आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से यह पूरे विश्व में एक नए दौर की प्रारंभ के साथ में आगे बढ़ा है। अब आपका चाहे वो YouTube हो, चाहे Facebook हो, या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोग जाना उसमें बहुत सारे फ़ोटो अपलोड करते हैं, अपने मित्रों को दिखाते हैं, उनसे सराहना लेते हैं, उनसे अप्रेजल्स लेते हैं। इस प्रकार से ये सिलसिला बढ़ता है। तो अगर हम लोग प्यारे शिक्षार्थियों देखें कि जो आज की फ़ोटोग्राफी है उसने एक लंबा अपना समय तय किया है, और कला और व्यवसाय के साथ साथ फोटोग्राफी आज समाज के उस दौर में स्थापित है एक स्तंभ की तरह, जिसको कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से निरूपित करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और हम देखते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ जिसको के बारे में हम लोग कहते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ हज़ार शब्दों के बराबर में है, तो आप भी अपनी जो क्लोज़अप है, अपना जो ग्रुप समूह फ़ोटो है, उसके माध्यम से बहुत कुछ कहना का प्रयास करते हैं। तो ये तो हुई शिक्षार्थियों भूमिका की बात। अगर हम लोग आज इस पाठ के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार विषय जो कि आपकी उच्चतर शिक्षा में पढ़ते हैं, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि आज का पाठ पढ़ने के बाद में हम लोग फोटोग्राफी के महत्व और संभावनाओं की चर्चा कर सकेंगे, फोटोग्राफी के इतिहास तथा विकास के बारे में जान सकेंगे और इसकी व्याख्या भी कर सकेंगे। साथ ही साथ फोटोग्राफी जो शब्द है उसकी भी हम लोग व्याख्या कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने देखा है कि NIOS की परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न पूछा ही जाता है कि फोटोग्राफी शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि डिजिटल फोटोग्राफी और फिल्म फोटोग्राफी के मध्य में क्या अंतर है, और उन अंतरों को जानने के उपरांत पाठ 25 आपका संपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें उपयोगिता की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा हम अपने चारों तरफ फोटोग्राफ्स को देखते हैं, यहाँ तक कि बस के पीछे लगा हुआ साइन बोर्ड, आपकी दीवारों पर, पत्र पत्रिकाओं में कई प्रकार के चित्र हम देखते रहते हैं, समाचार पत्रों में रोज़ाना आपको ऐसे कई फोटोग्राफ देखने को मिल जाते हैं जो किसी न किसी घटना या आयोजन का चित्रण करते हैं। अब इन घटनाओं के चित्रण के माध्यम से हम सूचना भी दे पाते हैं, जो कि हमने पढ़ा भी है कि जनसंचार का एक मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना भी है। अब ये मान के चलिए अभी हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उसको देखिए किस प्रकार से कुछ व्यक्तियों ने अपने मोबाइल से शूट किया, कुछ लोगों ने उसके चित्र निकाले, तो आप देखिए कि इतनी बड़ी विनाशक आपदा का चित्रण एक छोटी सी वीडियो की क्लिप ने, एक छोटे से चित्र ने कर दिया था, जिसको कि हम लोग आज भी देखते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक चित्र, जिसके बारे में हम लोग बार बार कहते हैं कि एक चित्र हजार शब्दों के बराबर है, तो वाकई यह बात सत्य है, क्योंकि वो चित्र देख करके हम लोग उत्तराखंड की त्रासदी के बारे में पूर्ण रूप से जान गए थे कि किस प्रकार से बादल फटने के बाद जो वहाँ पानी में उफान आया और वो नदी बेकाबू हुई और नीचे तक आई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग जनसंचार के अध्ययन की बात करें तो उसमें फोटोग्राफी का महत्व भी बढ़ जाता है, और तो और फोटो जर्नलिज्म नाम से इसका एक प्रकोष्ठ भी है, जिसमें कि हम लोग जिन जर्नलिस्टों का चयन करते हैं वो सिर्फ फोटोग्राफी के माध्यम से ही पत्रकारिता करते हैं, और निश्चित रूप से उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ कालांतर में बहुत महत्वपूर्ण भी साबित होते रहे हैं। और आज भी हम लोग कुछ ऐसे चित्रों को देखते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय वो घटना कैसे घटी रही होगी। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो देखें कि जब इतनी इसका महत्व है, फोटोग्राफी का इतना महत्व है, इतना इसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं, तो यह भी यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए कि फोटोग्राफी का उद्भव कहाँ पे हुआ था, इसका इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, तो यह सब कुछ भी हमको जानने का प्रयास यहाँ पे करना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य ने संप्रेषण प्रारंभ किया था प्यारे शिक्षार्थियों, तब से ही उसने तस्वीरें बनानी प्रारंभ की थी, चाहे वो परिष्कृत रेखांकन के रूप में हो, चाहे चित्रकला के रूप में हो, चाहे केव आर्ट के रूप में हो, जिसको कि हम लोग देखते हैं कि गुफाओं में भित्ति चित्र के माध्यम से भी उन्होंने कुछ चित्रों को उकेरा, उनके माध्यम से संचार करने की उन्होंने सोची और अपने आप में समर्थ भी रहे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब देखते हैं कि 19वीं सदी में प्रथमार्ध में जब फोटोग्राफी की प्रौद्योगिकी की खोज हुई, जब टेक्नोलॉजी को खोजा गया, तब से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश हो, उसकी हूबहू तस्वीर प्राप्त करने में हम लोग सक्षम हो गए थे। और साथ ही साथ फिल्म के साथ कैमरे ने फोटोग्राफी की शुरुआत भी कर दी थी, और बहुत समय तक लोग उस यंत्र के विषय में जानते थे जो कि बाह्य दृश्य को किसी दीवार या पर्दे पर प्रदर्शित करता था, लेकिन प्रकाश के जाने के बाद ही वह तस्वीर भी मिट जाती थी। इसका मतलब है कि हमारी बाध्यता होती थी कि प्रकाश को ही हम लोग चित्रित कर पाते थे, और प्रकाश के ख़त्म हो जाने के बाद वह चित्र स्वतः मिट जाता था, हम लोग उस चित्र को नहीं देख पाते थे। अब जब हम लोगों ने यह सोचा, उस समय के लोगों ने यह सोचा कि किस प्रकार से इस चित्र को मूर्त रूप दिया जाए, तो उसी के संबंध में और भी खोज प्रारंभ हुई, और कालांतर में पिन होल कैमरे का आविष्कार किया गया। और पिन होल कैमरे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे शिक्षार्थियों कि पिन होल कैमरे को कैमरा ऑब्स्क्यूरा भी कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि पहले सर्वप्रथम बने कैमरे का क्या नाम है, तो आप वहाँ पे लिखिए कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा, तो आपको एक नंबर तुरंत मिल जाएगा, उसके लिए आपका उत्तर सही होगा। तो ये जो कैमरा ऑब्स्क्यूरा है, पिन होल कैमरा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं कि किस प्रकार से पिन होल कैमरा कार्य करता है और कितना सरलतम यह उपकरण है। अब कितना सरलतम यह उपकरण है, इसके बारे में हम लोग अगर बताना चाहें तो हम लोग बताएंगे कि एक लंबा सा आप बॉक्स लीजिए, उसके एक सिरे पर सुराख कर लीजिए और दूसरे सिरे पर एक सफ़ेद ट्रेसिंग पेपर चिपका दीजिए, और मानिए कि आपका कैमरा बन गया है। अब आप इस बॉक्स को लेकर के जहाँ भी बैठेंगे तो इस छोटे से कैमरे का जो पिन है, होल है, पिन होल, वहाँ से प्रकाश जाएगा और उसका उल्टा चित्रण दूसरी तरफ बनेगा। और हम लोग सभी जानते ही हैं प्यारे शिक्षार्थियों कि इस पिन होल कैमरे का आविष्कार प्राचीन काल में ग्रीक लोगों ने किया था, और बहुत समय तक लोगों ने इसका उपयोग भी किया। आप देखिए कि बहुत सारे आपको इंटरनेट पर चित्र मिल जाएंगे पिन होल कैमरे के, उनमें देखिए कि किस प्रकार से लोगों ने इसका प्रयोग किया है, प्रभाव की प्रकाश के प्रभाव को अंकन करने में, तस्वीरों को स्थायित्व प्रदान करने में। और कालांतर में जब कुछ रसायनों की खोज हुई, कुछ ऐसे रसायन बाजार में आ गए जिन्होंने कागज के ऊपर में फोटोग्राफ को स्थायी रूप से अंकित करना प्रारंभ किया, तो वह समय था एक क्रांतिकारी समय, और उसके बाद से जो भी तस्वीरें बनी हैं प्यारे शिक्षार्थियों, वो तस्वीरें आज भी देखी जा सकती हैं, उनको आज भी हम लोग संग्रहित करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख पाए हैं, चाहे वो बड़े बड़े म्यूजियम्स में ही क्यों ना रखी हों, लेकिन उन चित्रों को जिनको कि कागज़ पे हमने विभिन्न प्रकार के रसायनों के माध्यम से उकेरा था, वो चित्र आज भी हमारे समक्ष एक सजीव उदाहरण के तौर पर उपलब्ध हैं। तो अब एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो आधुनिक फोटोग्राफी है प्यारे शिक्षार्थियों, उसका आविष्कार किसने किया था? आपको आपके सामने ये प्रश्न भी आता है, तो इसका उत्तर ये है कि आधुनिक फोटोग्राफी का आविष्कार जोसेफ नीस तथा लुइस डेगुरे नाम के दो फ्रांसीसी जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा सन 1827 में किया गया, और 1827 में नीस ने ही सबसे पहला फोटोग्राफ लिया था जिसको कि दुनिया के सबसे पहले फोटोग्राफ के बारे में जानते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पे मैं बड़ी रोचक सी बताना चाहूँगा कि यह जो तस्वीर है जिसको कि दुनिया की सबसे पहली तस्वीर कहा जा रहा है, इस तस्वीर को लेने के लिए फिल्म को, जो फिल्म इसमें लगी थी उसको दृश्य के समक्ष 7 घंटे रखा गया था, तब उसका चित्रण उस फिल्म पर हो पाया था। अब आप देखिए कि हम 1827 की बात कर रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों, 1827 में नई नई तकनीक आई थी फोटोग्राफी की, कितना कठिन कार्य रहा होगा उस समय फोटो खींचना, कि विश्व की जो पहली फोटोग्राफ है उसको खींचने के लिए हमको कैमरे के अंदर की फिल्म को दृश्य के समक्ष 7 घंटे तक रखना पड़ा था। रखने का मतलब है कि 7 घंटे हमने फिल्म को एक्सपोज किया होगा, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 7 घंटे के एक्सपोजर के बाद जो परिणाम हमको मिला होगा वो नीस के द्वारा ली गई विश्व की सबसे पहली फोटो थी। अब नीस के जो सहयोगी है लुइस डेगुरे, उनको फोटो खींचने में प्रौद्योगिकी में इम्प्रूवमेंट करने का बड़ा मतलब चस्का था, वो आगे चल करके उन्होंने देखा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करके फोटोग्राफी को और सुधारा जा सकता है। तो इसी के चलते जो लुइस डेगुरे हैं उन्होंने 1839 में फोटोग्राफी उन लोगों के लिए भी सुलभ करा दी जो इसको आजमाना चाहते थे। इसका मतलब है आम जनता के लिए भी फोटोग्राफी 1839 में सुलभ हो गई थी और आम जनता ने भी फोटोग्राफी करनी प्रारंभ कर दी थी, और लुइस डेगुरे के द्वारा और नीस के द्वारा जो विकसित कैमरा है वो बाजार में अब उपलब्ध था और लोग उस पर हाथ आजमा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है प्यारे शिक्षार्थियों कि जो आरंभिक 50 वर्ष हैं फोटोग्राफी के इतिहास के, उस समय फोटोग्राफ लेना उतना सरल नहीं था जितना कि आज हमें लगता है कि मोबाइल निकाला, सिर्फ ऑन किया और बटन दबाया, खचक से फोटो आ गई आपकी। तो उस समय ये काम बहुत ही कठिन था, क्यों? क्योंकि कैमरे बहुत बड़े होते थे, उनको स्टैंड पे लगा करके उपयोग किया जाता था, और जहाँ फोटोग्राफी के लिए आपको बैठाया जाता था वहाँ बहुत देर तक आपको एक स्थिर मुद्रा में बैठना पड़ता था, उस स्थिर मुद्रा में बैठना भी कई बार लोगों के लिए संभव नहीं था। तो जब इतनी समस्याओं, इतने झंझावातों के चलते जब फोटोग्राफी का विकास होता है प्यारे शिक्षार्थियों, तो हम देखते हैं कि सन 1900 के पश्चात हल्के कैमरे भी अस्तित्व में आए जिन्हें कि आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था, बिना स्टैंड के इनका प्रयोग किया जा सकता था, और इसके बाद से इसमें और गुणात्मक सुधार किए गए और जनसाधारण के लिए फोटोग्राफी जो है उपलब्ध हो गई है। अब वो जो कैमरा बना था उसमें आपने कई बार देखा होगा कि एक बड़ा सा बॉक्स होता है, आगे एक छोटा सा लेंस लगा होता है, लेंस के आगे एडजस्टमेंट करने की भी कुछ व्यवस्था होती है, और पीछे एक काले रंग का बड़ा सा पर्दा लगा होता है, उस पर्दे के माध्यम से हम लोग अंदर के जाकर के फोटो संयोजित करते थे और उसको चित्रित कर पाते थे। लेकिन शिक्षार्थियों यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि फोटोग्राफी को अगर हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करें तो उसकी एक आदर्श परिभाषा क्या बनती है, क्योंकि हम देखते हैं कि NIOS की परीक्षाओं में ये प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि फोटोग्राफी से ऐसे होता है प्रकाश सहित रेखांकन। प्रकाश सहित रेखांकन मतलब रेखांकन तो हम पेंसिल से करते हैं ना, लेकिन अगर प्रकाश से हम लोग रेखांकन करें तो तो देखते हैं कि फोटोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द है फोटो, फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, और दूसरा शब्द होता है ग्राफी, ग्राफी का मतलब है ग्राफिक्स से, ग्राफिक्स का मतलब है कि आप अपने उसको रेखांकित करते हैं। तो इस परिभाषा क्या बनती है प्यारे शिक्षार्थियों, परिभाषा ये बनती है कि प्रकाश के माध्यम से किया गया रेखांकन फोटोग्राफी कहलाता है। अब प्रकाश के माध्यम से रेखांकन हम कैसे करते हैं, वो करते हैं हम लोग कैमरे की मदद से करते हैं, कैमरे उपकरण की यूज से करते हैं, उसमें फिल्म लगा करके करते हैं, या फिर आज जो आधुनिक डिजिटल कैमरे आ गए हैं उसके द्वारा हम लोग सीधे सीधे चिप पर लिखकर एक उसका अंकन कर पाते हैं, उस चिप के द्वारा हम फोटोग्राफ को कंप्यूटर में भी भेज पाते हैं, वहाँ पे उसको संपादित भी कर पाते हैं। अब जो दूसरी बात आती है कि फिल्म फोटोग्राफी की, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और फिल्म फोटोग्राफी का छोटा सा अध्ययन आपको यह भी बताएगा कि किस प्रकार से वैश्विक धरातल पर जो सिनेमेटोग्राफी हो रही है वो भी इसी से सीधे सीधे संबद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक फ्रेम की बात करते हैं जब हम लोग फोटोग्राफी पढ़ते हैं, जब हम फिल्म की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम 25 फ्रेम पाल की बात करते हैं, 30 फ्रेम NTSC की बात करते हैं, या इससे भी ज़्यादा अगर हम लोग हाई स्पीड की बात करते हैं जब हमको स्लोमो बनाने की आवश्यकता होती है, स्लो मोशन में किसी चित्र को रेखांकित करने की आवश्यकता होती है। तो जो ये एक बात है कि फिल्म फोटोग्राफी है, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि एक कैमरा होता है, उसके अंदर एक फिल्म होती है। अब कैमरा तो हो गया हमारा उपकरण, फिल्म हो गया हमारा वो पदार्थ जिसके ऊपर की फोटोग्राफी यानी कि फ़ोटो को अंकित किया जाना है। फ़ोटो को अंकित कैसे करेंगे, फिल्म को प्रकाश के प्रति जो संवेदनशील है उससे हम लोग अंकित करेंगे। जब हम बटन दबाते हैं कैमरे का तो सामने लगे शटर से कुछ प्रकाश उसके अंदर जाता है, यह प्रकाश उस फिल्म पर अंकित हो जाता है, और जब हम फिल्म लैबोरेटरी में इसको प्रसंस्करित यानी कि प्रोसेस करते हैं तो वो जो चित्र हमने खींचा था वो हमको प्राप्त हो जाता है। और जो फोटो प्राप्त होता है वो हमको पहले मिलता है नेगेटिव पे, और नेगेटिव वही चीज़ है जो हमने रोल के रूप में डाली है कैमरे के अंदर, उस नेगेटिव के माध्यम से हम लोग पॉजिटिव तस्वीर सफ़ेद रंग के कागज़ पे निकालते हैं, जो कि प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड की फिल्म कोटिंग होती है, उससे हम लोग चित्र को प्राप्त कर लेते हैं। तो शिक्षार्थियों यहाँ पे ये हमने हमारे पास एक टेबल बना है कि कैमरे की मदद से फ़ोटो खींचना, फिल्म का प्रसंस्करण करना, फोटोग्राफिक पेपर पर फिल्म प्रिंट करना। तो यह जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है इसको भी आपको ठीक से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में यह भी आपसे पूछी जाती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपने दादा दादी के जो फोटोग्राफ देखे हैं जिसमें रंग नहीं होते हैं, वो मुख्यतः श्वेत श्याम है, क्योंकि दादाजी के समय पर फोटोग्राफी उतनी विकसित नहीं थी, और उस काल में अगर हम लोग समाचार पत्रों को भी देखते हैं उस काल के, तो वहाँ भी हम लोग को श्वेत श्याम चित्र ही देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय तक फोटोग्राफी जो है श्वेत श्याम होती थी, जिसको कि हम लोग देते हैं कि उसमें कोई फिल्म हम लोग जो डालते थे वो रंगों का अंकन नहीं कर पाती थी, और रंगीन फिल्में बहुत बाद में बनाई गई हैं, और रंगीन फिल्म जब बन गई है तो उस फिल्म के आ जाने के बाद रंगीन फोटोग्राफी भी की गई है, और उस फोटोग्राफी को कालांतर में बढ़ाकर रंगीन सिनेमेटोग्राफी भी की गई है। मैं बार बार जो आपको यहाँ पे एक बात दोहरा रहा हूँ कि फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का सीधा सीधा आपस में संबंध है, तो उस पर भी आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि फोटोग्राफी के केस में हम सिर्फ एक जो फिल्म है उसको एक्सपोज करते हैं, और वीडियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी के केस में हम लोग एक सेकंड में 30 चित्रों को अंकित करते हैं, जिससे कि उसमें मोशन आ जाए, चलन आ जाए, वो चलने में समर्थ हो जाए। अगर उनको हम तेज़ी से अपनी आँखों के सामने से गुजारें तो वो हमको चलती हुई प्रतीत हो जाएँ। अब प्यारे शिक्षार्थियों आपने देखा होगा कि बचपन में जब आपका जन्मदिन होता था या किसी पार्क में आप घूमने जाते थे या दोस्तों से मिलते थे, तो उस समय आपने बहुत सारी फ़ोटो खींची होंगी। फिर आपने क्या किया होगा कि जब वो रोल भर गया होगा तो उसको जाकर के आपने लैब में दिया होगा, क्योंकि घर में तो बनाने का सामान होता नहीं है फोटोग्राफी का। अब वो लैब वाले क्या करते हैं, लैब के अंदर क्या होता है, ये भी हमको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि जो फोटोग्राफी की लैब होती है उसके अंदर एक अंधकार युक्त कक्ष होता है। उस कक्ष के अंदर फिल्म को रोल से निकाल लिया जाता है। रोल से निकालने में जो सबसे बड़ी सावधानी हमको रखनी है कि किसी भी प्रकार का प्रकाश उस कक्ष के अंदर ना हो, नहीं तो हमारा जो फिल्म रोल है जिसमें हमने फोटोज खींची थी वह खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश संवेदी रसायन की परत है और वह प्रकाश संवेदी रसायन किसी भी परिस्थिति में प्रकाश के प्रति इतना संवेदनशील है कि थोड़ा सा भी प्रकाश हमारे द्वारा खींचे गए चित्र को खराब कर सकता है। तो अगर हम लोग यह फिल्म प्रक्रिया देखें तो हम पाते हैं कि जब हम इसको कुछ रसायनों में डुबोते हैं तो सभी प्रकार के रसायन धुल जाते हैं और फिल्म पर अंकित तस्वीर स्थिर हो जाती है, जिसको कि हम आंखों से देख सकते हैं, किंतु यह एक निगेटिव के रूप में होती है। आपने देखा भी होगा, कई बार आपने फोटोग्राफी करवाई होगी, अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो खिंचवाई होगी, तो आपको फोटोग्राफर ने आपकी 5 प्रतियां या 6 प्रतियां जो फोटोग्राफ की ली हैं उसके साथ में एक छोटा सा निगेटिव भी दे दिया होगा। उस निगेटिव देने के प्रति उसका उद्देश्य ये रहा कि आप अगर आगे कभी अपनी फोटोग्राफ बनवाना चाहें तो इस निगेटिव को आपने किसी स्टूडियो में दे दिया, वहाँ से तुरंत के तुरंत वो बन जाएगी, या मेरे पास ही वापस से आप आएंगे तो ये निगेटिव लेकर के आ जाएंगे तो मैं दोबारा से आपकी वो पासपोर्ट साइज वाली फोटोज बना दूंगा। तो वो निगेटिव एक महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपको दोबारा से फोटोग्राफी नहीं करवानी पड़ेगी, फोटो खिंचवानी नहीं पड़ेगी, फोटो को रसायनों में डुबोना नहीं पड़ेगा, कुछ दिनों का समय का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो निगेटिव है अभी वो फोटोग्राफ नहीं है, वो सिर्फ निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक प्रकाश संवेदी कागज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि थोड़ा सा महंगा भी होता है। उस कागज के ऊपर में रख के जब इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाता है तो अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की प्रक्रिया हो रही है, कि पहले हमारा नेगेटिव था प्रकाश के प्रति संवेदनशील, अब हमारा जो सफ़ेद कलर का कागज है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जैसे ही नेगेटिव पर फोटोग्राफिक पेपर पर प्रकाश भेजा जाता है तो वो निगेटिव से होता हुआ सफ़ेद रंग के पेपर से पे पड़ता है, उस पेपर पे जो रसायन लगे होते हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, इससे आपका चित्र उस पे अंकित हो जाता है और वो चित्र इस प्रकार से अंकित होता है कि आगे आप उसको कभी हटा भी नहीं सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा स्थायी चित्र बन जाता है। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसमें एक आधुनिक कैमरे के बारे में बताया गया है। आप चित्र क्रमांक 25.4 अगर देखें तो उसमें एक आधुनिक कैमरा दिया गया है, आधुनिक कैमरे के साथ एक फिल्म रोल भी दिखाई गई है। नीचे 25.5 खा पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव तस्वीर भी दिखाई गई है। इन चित्रों को भी आप अच्छे से देख लें, इनको आप गूगल पे भी जाकर अच्छे से देख लें, जिससे कि आपको जीवन पर्यंत नेगेटिव और पॉजिटिव फोटो के बारे में पता चल जाए। क्योंकि आज तो हम लोग डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमको यह भी जानना चाहिए कि जो फोटोग्राफी का इतिहास है जिसको नीस ब्रदर्स ने प्रारंभ किया था वो किस प्रकार से एक लंबे संघर्ष के बाद आगे आई और बहुत दिनों तक उसने अपना शासन भी किया फोटोग्राफी के क्षेत्र में। कालांतर में हम लोग जब देखते हैं कि जब डिजिटल फोटोग्राफी होने लगी प्यारे शिक्षार्थियों, तब ये एक जनमानस में रुचि का केंद्र बन गया कि अब हर कोई व्यक्ति, हर किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का व्यक्ति, हर किसी प्रकार के समाज का व्यक्ति फोटोग्राफी कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल कैमरे थे वो इतने सस्ते, इतने हल्के थे कि सभी लोगों को सुलभ हो गए थे। और तो और जब कालांतर में मोबाइल फ़ोन पर इनका प्रयोग किया जाने लगा तब उसको हम लोग क्रांति का समय मानते हैं फोटोग्राफी का, क्योंकि उसके बाद फोटोग्राफी एक जनसाधारण में की जाने वाली दैनंदिनी की क्रिया हो गई और इस क्रिया ने फोटोग्राफी को एक नया आयाम भी दिया है जहाँ पे आज ये अपने आप को स्थापित पाती है। तो हम देखते हैं कि फिल्म कैमरा जिसका हम लोगों ने अभी तक वर्णन किया है वो बंद हो गए हैं, अब फोटोग्राफी सस्ती भी हो गई है, इसको करना आसान भी हो गया है। डिजिटल फोटोग्राफी को करने में और उपयोगी बनाने के पहले हम लोग देखते हैं कि दो कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि जो चित्र हमने खींचा है उसे तत्काल कैमरे के में देखा जा सकता है या कैमरे के पीछे लगी स्क्रीन पे देखा जा सकता है। दूसरा यह है कि डिजिटल फोटोग्राफी में फिल्म की आवश्यकता नहीं होती, इसको तुरंत के तुरंत आप कंप्यूटर पे रख कर या अपने मोबाइल के माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट, एक सोशल नेटवर्किंग साइट से दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में साझा किया जा सकता है। एक जो सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरे में हम देखते हैं कि एक मेमोरी चिप होती है, इसके ऊपर में हम लोग फोटोग्राफ को अंकित करते हैं, और जो कि ये अंदर लगी होती है मेमोरी चिप, इसमें जब तस्वीरें भर जाती हैं तो इनको हम लोग कंप्यूटर पर भी सुरक्षित कर पाते हैं। और ये सब हम लोग बहुत आधारभूत जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये 12वीं स्तर का पाठ्यक्रम है और हमको इस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही अपना अध्ययन अध्यापन रखना है, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में जब आपसे इस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों के जवाब देने में आप अपने आप को सक्षम बना पाएँ। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिजिटल फोटोग्राफी हो रही है उसको इंटरनेट की सहायता से दुनिया में किसी भी हिस्से में हम भेज तो पा ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हैं जिनके द्वारा हम इनको प्रोसेस भी कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल तो इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना अच्छे से चमका देता है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मेरा मित्र है, या उसका रंग गोरा था या सांवला था, या उसके चेहरे पर झाई थी। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी विकसित कर लिए हैं जो हमारी थोड़ी सी निम्न श्रेणी के चित्रों को भी उच्च श्रेणी के चित्रों में परिवर्तित कर देती है। कई कई बार इससे भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है प्यारे शिक्षार्थियों, किंतु अगर हम लोग सौंदर्य बोध के अध्ययन के उस दृष्टि से देखें तो यह कई कई बार अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम जिस कलर की, जिस रंग की हरी घास को देखने का प्रयास करते हैं अपने आँखों से, अगर वो सही रंग हमको प्रसंस्करण के बाद में यानी कि प्रोसेसिंग के बाद में भी मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप, मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अब फोटोग्राफी को विकसित किया जा चुका है और इसका प्रचलन हो रहा है। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है प्यारे बच्चों शिक्षार्थियों की फ़िल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा में अंतर क्या है। तो हम लोग जल्दी से यह जान लेते हैं कि जो फिल्म कैमरा होता है वह रसायन संवेदी फिल्म पर पिक्चर नेगेटिव बनाने के लिए चित्रांकन करता है। फिल्म को ऑप्टिकल नेगेटिव के रूप में प्रसंस्कृत किया जा सकता है यहाँ पे। और फिल्म कैमरे में हम देखते हैं कि यह बड़ा होता है तथा बैटरी के बिना भी काम कर सकता है। फिल्म कैमरे की तस्वीरों को जब लैब में भेजा जाता है तभी उनको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, और फिल्म कैमरे की तस्वीरों को भौतिक रूप से भेजा जा सकता है जिसमें काफ़ी समय भी लगता है। इसी के अनुरूप अगर हम लोग डिजिटल कैमरे के बारे में देखते हैं तो डिजिटल कैमरे की जो फ़ोटो हैं वो डिजिटल संकेतों के रूप में अंकित होती हैं जिनको कि हम लोग चिप पर संग्रहित कर पाते हैं। डिजिटल तस्वीर कैमरे में तुरंत देखी जा सकती है, प्रसंस्करण तथा नेगेटिव की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल कैमरा बहुत छोटा तथा सदैव इसके लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। डिजिटल कैमरे की तस्वीरें कंप्यूटर पर कॉपी हो सकती हैं तथा प्रिंट की जा सकती हैं। कंप्यूटर पर ईमेल की सहायता से डिजिटल कैमरे का फोटोग्राफ आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर हम लोग डिजिटल कैमरे के कार्य प्रवाह के बारे में अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कैमरे से हम चित्रांकन करते हैं, चित्रांकन के उपरांत कंप्यूटर पर चित्र डाउनलोड कर पाते हैं। चित्रों को जब कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग इन फोटोज़ को प्रोसेस भी कर लेते हैं, प्रसंस्कृत भी कर लेते हैं। प्रसंस्कृत के बाद या तो हम लोग इनका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं या फिर इनको हार्ड डिस्क पर रख करके इंटरनेट पर या विभिन्न प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से आपस में साझा भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज का हमारा पाठ, और हम लोगों ने बहुत आसानी से जान लिया कि समाचारों में चित्रों का क्या महत्व है, चित्रों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, रेखांकन चित्रकला से फोटोग्राफी तक कैसे इसका विकास हुआ, पिनहोल कैमरा क्या होता है, पिनहोल कैमरे की मदद से हम लोग चित्रों का प्रक्षेपण कैसे करते हैं, आधुनिक फोटोग्राफी का आविष्कार निस्बदस के द्वारा कब हुआ था, फोटोग्राफी की परिभाषा क्या होती है, फिल्म कैमरा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, रंगीन फोटोग्राफी, और बाद में हमने डिजिटल फोटोग्राफी को भी जाना समझा और जो सबसे अच्छी बात जानी आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम में कि फोटोग्राफी शब्द की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग कैसे इस शब्द को समझ सकते हैं, तो हमने यह जाना कि फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ग्राफी का मतलब होता है रेखांकन, यानी कि प्रकाश के द्वारा जब कभी हम रेखांकन करते हैं तो उसको हम लोग फोटोग्राफी कहते हैं। जो हमारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हुए हैं तो उनके चित्रों के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग का हम लोग चित्रण भी कर पाते हैं कि एक चित्र के द्वारा कही गई बात को हम लोग इस गहनता से देखते हैं कि उसमें समाज में अभिलक्षित होने वाले वर्ग की सभी प्रकार की दैनंदिनी समस्याओं को या उनके द्वारा उनकी जिज्ञासाओं को या उनके द्वारा कही गई बातों को भी हम समझ पाते हैं। शायद यही महत्व है जो फोटोग्राफी को आज भी समाचार पत्रों तक जीवित रखे हुए है। आज भी विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स छपते रहते हैं और कई कई बार ये फोटोग्राफ इतने महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं कि आज विभिन्न प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपके जैसे हमारे जैसे फोटोग्राफर अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरों को विपणन के लिए बेचने के लिए भी रख पा रहे हैं। तो अगर एक व्यवसायी फोटोग्राफर के तौर पर आप अपने आप को देखते हैं कि इस क्षेत्र में मुझे अपना हाथ आजमाना है तो आप शुरू हो जाइए। आपके पास जो आधारभूत उपकरण है वो होने चाहिए और उनके बाद में जो सबसे बड़ी बात है प्यारे शिक्षार्थियों कि आपके अंदर रचनात्मकता का बोध होना चाहिए। नित प्रति नए तरीके से आपको चित्र लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो शिक्षार्थियों श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पे सीमित करते हैं और आज आपने जनसंचार विषय के अंतर्गत पढ़ लिया है फोटोग्राफी एक परिचय। धन्यवाद।